हमने अल्लाह ताला की मोहब्बत को भी देखा और उसको माँ और बच्चे की मोहब्बत के साथ रिलेट करके भी देखा और माँ और बाप की मोहब्बत का फ़र्क भी देखा। अल्लाह ताला की ज़ात जेंडर से पाक है। जेंडर कहते हैं मुज़क्कर या मुअन्नस, यानी जिन्स के तायुन के साथ। लेकिन हम अपनी ज़ुबान में अल्लाह ताला कहता है कहते हैं। कभी किसी से आपने ये नहीं सुना होगा कि नाउज़ बिल्ला अल्लाह ताला कहती हैं, या गॉड का तसव्वुर हमेशा मुज़क्कर में ही आता है। इसलिए सिर्फ बात समझने के लिए कि अल्लाह की ज़ात ने अपने लिए माँ की मोहब्बत को क्यों चुना, क्योंकि ये वो अनमोल मोहब्बत होती है जो एक इंसान की ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार अदा करती है। वो शख्स जो अल्लाह ताला की मोहब्बत को महसूस करता है, लेकिन उसके साथ ही साथ वो मालिक के यौम दीन के तसव्वुर में नहाया होता है, उसको पता चल जाता है कि मुझे बोले हुए एक एक लफ्ज़ का हिसाब देना है, किए हुए एक एक एक्शन की सज़ा या जजा भुगतनी है, तो फिर उसकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी चेंज आती है। और वो चेंज उसकी ज़ुबान पे किस सूरत में आती है कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, सिर्फ तेरी ही हम इबादत करते हैं और सिर्फ तुझ ही से हम मदद तलब करते हैं। ये एक आयत है जिसमें हाल की बात भी है और मुस्तकबिल की बात भी है। अरबी ज़ुबान में मुजारे का सीगा जो है वो हाल और मुस्तकबिल दोनों का माना देता है, यानी इसमें प्रेजेंट भी आता है और फ्यूचर भी आता है। यहाँ नाबुदू और नस्ताइन ये दोनों मुजारे के सीगे हैं। इससे क्या पता चलता है कि एक ईमान वाला अल्लाह ताला के साथ एक अहद भी करता है और एक वादा भी करता है कि अल्लाह इया का खास तेरी ही, बहुत ही अहम लफ्ज़ है यहाँ इया। दो लफ्ज़ हैं बज़ाहर देखने में, लेकिन असल में तीन हैं, हमज़ा या और या। इन तीन लफ्ज़ों ने तौहीद और शिर्क के फ़र्क को वाज़े कर दिया। ये फ़र्क उर्दू में इसी तरह आएगा जैसे ही और भी। लिखिए ज़रा अपने पास, ही और भी। एक बीवी अपने शौहर से कहे कि मैं तेरी ही बीवी हूँ, और इसी जुमले को ज़रा सा चेंज करके कह दे कि मैं तेरी भी बीवी हूँ। ये फ़र्क है, बस यही फ़र्क है इया का लफ्ज़ में, कि हम कहते हैं कि अल्लाह सिर्फ तेरी ही हम इबादत करते हैं, यानी सब को काट दिया। और हमारा दीन इसी इया से शुरू होता है, ला इलाहा इल्लल्लाह। कलमा तैयबा जब हम बोलते हैं या पढ़ते हैं या लिखते हैं, तो पहले कहते हैं ला, और इस ला से तमाम माबूदों की माबूदियत का इनकार करते हैं कि आज के बाद तेरा हम पल्ला कोई नहीं, कोई और हमारी सोचों में हमारे ख्यालों में नहीं आएगा, और आज के बाद सिर्फ एक ही इलाह है और वो तू है। क्या कहा? नाबुदू, हम इबादत करते हैं। नो, नाबुदू का लफ्ज़ जो है ये आइन बादाल से है, और अबद आइन इबादत, आबिद माबूद, इसके अंदर लफ्ज़ इबादत छुपा हुआ है। इबादत किसको कहते हैं? ये बहुत ही दिलचस्प लफ्ज़ भी है, बहुत दिलचस्प टॉपिक है आप ये कह लें, क्योंकि असल में यही समझ गए तो पूरे कुरान पाक को समझना आसान हो जाएगा। इबादत के लिए कुरान पाक में सूरत ज़ारियात आयत 56 में भी आता है, वमा खलकतुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून, मैंने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ इसलिए पैदा किया कि वो मेरी इबादत करें। यहाँ इस आयत को अगर हम इस मानी में लें कि इबादत का मतलब नमाज पढ़ना है या रोज़ा रखना है या हज और ज़कात है, तो बाज़ लोगों को गलत फहमी लग जाती है और वो कहते हैं कि क्या अब हम हर वक्त नमाज़ें पढ़ते रहें, क्योंकि इस आयत से तो ये लगता है कि बस इबादत ही मकसद है ज़िंदगी का। तो बहुत ज़रूरी है कि हमें इबादत का वसी माना मालूम हो, थोड़ी सी बातें डिक्शनरी के नाते से इबादत के लफ्ज़ को देखेंगे, और इसके बाद फिर इंशाल्लाह अमली तौर पे देखेंगे कि इबादत क्या होती है, और इबादत की 10 किस्में भी नोट करेंगे। और जिसको ये बात समझ आ गई, आज थोड़ी सी अपनी नीयत को चेंज करने के बाद वो ये कह सकता है कि मैं 24 घंटे इबादत की हालत में रहती हूँ। लेकिन जब ये सोच नहीं होती तो फिर कोई इस बात का जिम्मा नहीं ले सकता कि वही काम जो इंसान अल्लाह ताला की दी हुई जिम्मेदारियां समझ के करता है, उसको जब बोझ समझ के या अपने जाती काम समझ के करे तो उसके नतीजे में वो लफ्ज़ वो फिर उसको उतना फ़ायदा नहीं देते जो इस एहसास के साथ जीने के साथ फ़ायदा होता है। इबादत का एक मफहूम जो डिक्शनरी में है वो क्या है? पस्ती और आजजी। अल इबादतु अत तजल्लुल। इबादत का मतलब पस्ती और आजजी है। इसीलिए कुरान पाक में इबादत के मुकाबले में जो लफ्ज़ आता है वो इस्तिकबार का आता है, तकब्बुर, यानी तकब्बुर की नफ़ी है इबादत। सूरत मोमिन आयत 60 में आता है, इन्नल्लज़ीन यस्तकबिरून अन इबादती सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन। जो लोग मेरी इबादत से तकब्बुर करते हैं वो सब जहन्नुम में दाखिल होंगे। तो इबादत को अगर एक लफ्ज़ में कहें तो वो खुशू, और दूसरे में कहें तो तजल्लुल, आजजी, पस्त होने के मानी है। अरबी में उस रास्ते को जिस पे बहुत कसरत से चला जाए उसको कहते हैं माबद रास्ता। माबद, चल चल के वो रास्ता हमवार हो चुका है। तो शरीयत में इससे मुराद है ऐसी कैफियत जिसमें इंतहाई मोहब्बत के साथ इंतहाई खुदू और खौफ मौजूद हो। इसी तरह इमाम इब्ने तैमिया, बहुत बड़े इमाम गुजरे हैं अपने दौर के असलाफ में से, वो कहते हैं कि अबूदियत इंतहाई आजजी और इंतहाई मोहब्बत के मजमुए का नाम है। लफ्ज़ुल अबूदियती यतज़म्मनु कमाल ज़ुल्ली व कमाल अल-हुब। तो आप कह सकते हैं कि ज़ुल आजजी का भी कमाल, बंदा अल्लाह के सामने इतना आजिज़ हो कि आंखें ना उठा सके। हमारे दिल में जिसकी रिस्पेक्ट होती है ना, हम उसकी तरफ आंखें नहीं मिला सकते, हम उसको टुकर टुकर नहीं देख सकते, हम उसका मुकाबला नहीं करते आंखों में आंखें डाल के। इंसान कन्नी कुतरा जाता है, उसको झिझक आती है। अल्लाह ताला के सामने जब एक बंदा नमाज की हालत में खड़ा हो या किसी भी जिम्मेदारी के एहसास के साथ खड़ा होता है तो उस वक्त वो एक आजिज इंसान की सूरत में खड़ा होता है। उसको पता लग रहा होता है कि इस वक्त मैं अपने मालिक के सामने खड़ा हूँ। लेकिन इसके साथ साथ एक ईमान वाले के दिल में अल्लाह से इतनी शदीद मोहब्बत होती है कि कमाल अल हुब, हुब का भी कमाल बन जाता है। ये बात इन्होंने अपनी किताब रिसालतुल अबूदिया के सफ़ा नंबर 28 पे कही। इसी तरह इब्ने कय्यम रहमहुल्ला, ये एक दूसरे स्कॉलर थे, ये कहते हैं कि इबादत के दो अज्जा हैं, इंतहाई मोहब्बत और इंतहाई एज्ज और पस्ती के साथ। तो लिहाजा सारी तारीफों को जमा कर लें तो लफ्ज़ इबादत के अंदर जो बात आती है वो खशियत की आती है, अपनी अना को तोड़ देना, अपनी मर्जी को छोड़ देना। इसीलिए तो अल्लाह ताला ने कहा कि लौ अनज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिल लराइतहू खाशियम मुतसद्दियम मिन खशिल्ला। तुम देखते कि अगर हम इस कुरान को एक पहाड़ पे नाजिल कर देते तो वो खशियत के साथ कांपने लगता, थरथराने लगता। इबादत तजर्रो का नाम है, इबादत इख्बात का नाम है। एक और लफ्ज़ आता है इबादत, इख्बात कहते हैं आग का बुझना, धीमा होना। जैसे आग लोग जलाते हैं ना, आज भी कोई शायद कहीं कोल्स जलते हों तो आप देखिए कि शुरू में बहुत ऊंचे ऊंचे शोले होते हैं, जोश होता है, लेकिन जब ठंडी होने लगती है ना आग तो फिर शोले बुझने लगते हैं। यही है इबादत की असल, एक बंदा अपने रब के हुक्म आगे बुझने लगे, ठंडा पड़ जाए। कुरान पाक में देखो लमा खबत जिदना हम सईरा, जब ये आग ठंडी होने लगेगी हम इसको फिर तेज कर का नाम इबादत है। सूरत हुद आयत 23 में भी आता है, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाती व अखबतू इला रब्बिहिम। बेशक वो लोग जो ईमान लाकर अमल सालेह करते हैं और उन्होंने अपने रब के सामने आजजी की। इसी तरह लफ्ज़ इबादत के अंदर एक और लफ्ज़ जो आता है वो इनाबत का है। इनाबत कहते हैं झुकने को, झुकाओ, इंक्लाइनेशन। وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم عذاب. اور رجوع کرو، جھکو اپنے رب کی طرف اور فرما بردار ہو جاؤ اس کے لیے اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں عذاب آئے گا. لفظ منیب بولا جاتا ہے ہمارے ہاں، وہ بھی اسی لفظ سے ہے. اسی طرح عبادت کے لفظ میں قنوت، قنوت یہ جو دعائے قنوت پڑھتے ہیں نا وہی ہے. قنوت لفظ قوم للہ قانتین سورت بقرہ میں ہی آتا ہے، اسی طرح سورت الاحزاب میں بھی آتا ہے کہ والقانتین والقانتات، اور اسی طرح سورت توبہ میں بھی کچھ اسی قسم کے لفظ ہیں. اور قنوت کے اندر دوام اور عجزی. میں یہ سارے لفظ کیوں بتا رہی ہوں آپ کو؟ بڑے مشکل لگ رہے ہوں گے آپ میں سے کچھ کو لکھنے، مت لکھیے، لیکن اپنے اندر پیدا کرنا ہے. ہم جب کہتے ہیں نا کہ یا کا نعبدو، تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں. اپنے لفظوں میں ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ میں تیری بندی ہوں، میں تیری غلام ہوں، میں تیری محبت میں چور ہوں، میں تیرے آگے عاجز ہوں، میرا دل تیری خشیت سے لرز رہے. انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے تو علم والے ہی بندے ڈرتے ہیں. پھر انسان اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ اللہ میں تیرے آگے آ کے بجھ گئی، بس اب میری کوئی مرضی نہیں. مجھے خوب جوش آیا ہوا تھا لیکن تیری بات سن کے میں ٹھنڈی پڑ گئی. پھر ہم یہ کہتے ہیں اللہ میں تیری طرف جھکنے والی، انابت کرنے والی ہوں، اور میں تیرے آگے ہمیشگی کے لیے جھکوں گی. جب تک یہ کیفیت نہیں ہوتی، دن میں کئی بار یا نعبدو کہتے جائیے، بات کا فائدہ نہیں ہوگا. اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یا نعبدو، تو اصل میں ہم کہتے ہیں کہ اللہ میں آپ کی غلام ہوں. اب غلامی آج کے دور میں ہم نے دیکھی نہیں ہے، پریکٹیکل سلیوری نہیں دیکھی، سمجھ نہیں پائیں گے. ہم کہتے ہیں سرونٹ، بعض دفعہ انگلش ترجموں میں عبادت کے معنی میں یا اس نعبدو کے معنوں میں سرونٹس کا لفظ لکھا ہوتا ہے، حالانکہ غلام اور ملازم یا امپلائی یا سرونٹ میں، میڈز میں زمین آسمان کا فرق ہے. مثلا آپ کی میڈ آج آپ کی میڈ ہے، آپ کے حکم کی بندی ہوئی ہے، کل جاب چھوڑ دے وہ اور آپ برابر ہیں. جو اس کے ووٹ کی قیمت ہے وہی آپ کے ووٹ کی قیمت ہے. کل ہو سکتا ہے ایک ہی جگہ سے آپ بھی کھانا لے رہے ہیں وہ بھی لے لے، ایک ہی گروسری سٹور میں وہ بھی ہو آپ بھی ہو. اس کے برعکس غلامی میں ایسا نہیں ہوتا تھا. جو غلام ہوتا تھا نا وہ ہمیشہ کے لیے غلام ہوتا تھا. میڈز ہوتی ہیں، وہ ہو سکتا ہے جاب پہ ہیں 4 گھنٹے، آپ جو کہیں وہ کرتی جائیں، جو ہی آپ کے آورز ختم، ہو کیئرس، وہ تو صاف کہہ دیں گی وقت ختم ہو گیا، آئی ایم گوئنگ. لیکن غلام 24 گھنٹے کا غلام ہوتا تھا. ہو سکتا ہے آپ کی جو میڈ ہے وہ آپ کے ساتھ کسی اور کا بھی کام کر رہی ہو، 4 گھنٹے آپ کے پاس کرے، 2 گھنٹے کہیں اور چلی جائے، لیکن جو غلام ہوتے تھے وہ رات دن کے غلام ہوتے تھے. اگر وہ کوئی اور کام بھی کرتے تھے تو اس کی پیٹ جو ہوتی تھی یا اس کے جو پیسے تھے وہ اپنے آقا کو دیتے تھے. لیکن چلیے گئی گزری بات ہی کر لیتے ہیں، غلامی کو چھوڑ دیں، صرف اپنے ملازموں کی بات کر لیتے ہیں. جب بھی کسی کو کہیں امپلائی رکھا جاتا ہے نا، تو آفیشیل اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ پہلے ایک اپلیکیشن فارم فل کیا جاتا ہے، ادارے کی طرف سے وہ آفر کیا جاتا ہے کہ یہ اپلیکیشن فارم ہے، اس میں ہر اچھی بچھی لکھی ہوتی ہے، کیا کریں گے، کیا لیں گے، کتنا وقت اور کیا اور کچھ. پھر وہ اپلیکیشن جاتی ہے اس ادارے کے جو منتظمین ہیں ان کے پاس، وہ چیک کرتے ہیں. پھر صرف اس کی اپلیکیشن نہیں، اس جاب کے لیے جتنی بھی اپلیکیشنز آئی ہوتی ہیں سب کو ٹیلی کیا جاتا ہے، کون اس جاب کے لیے سب سے زیادہ بیٹر ہے. پھر 10 اپلیکیشنز میں سے 3 چوز کی جاتی ہیں، پھر ان 3 میں سے 3 کے انٹرویوز کیے جاتے ہیں، پھر کال کی جاتی ہے. جب کوئی اپلیکیشن دیتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ اب آپ ہماری کال کا انتظار کریں. اب دل دھڑک رہا ہوتا ہے، جو لوگ جاب لیس ہو جاتے ہیں آپ ان مردوں سے پوچھئے، کئی کئی جگہ انہوں نے اپلیکیشنز دی ہوتی ہیں. بہرحال جس کو یہ کال آ جائے کہ آئیے آپ کو انٹرویو کے لیے بلایا ہے، تو وہ خوش ہو جاتا ہے کہ امید لگ گئی. چلیں پہلے تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کچھ ہو رہا ہے نہیں، اب یہ پتہ چل گیا کہ کچھ نہ کچھ ہوگا. اب جب وہ آتے ہیں انٹرویو میں، آپ ذرا کبھی آپ نے اگر دیا ہو تو سوچئے، دل دھک دھک کر رہا ہوتا ہے اور لوگ اتنا تیار ہو کے آتے ہیں، بعض لوگ سوتے ہی نہیں اس رات کو جس دن صبح اٹھتے ہی ان کا انٹرویو ہے، لیٹ نہ ہو جائیں، پہن کے کیا جاؤں، فرسٹ لک کیسی ہوگی، انٹر کیسے ہونا ہے، بات بات پہ چونک جانے والا انداز ہوتا ہے، گھبرائے ہوئے لگتے ہیں. بہرحال پھر وہ 3 لوگوں کا انٹرویو ہوتا ہے، पूरी कोशिश की जाती है उसमें कि अपनी स्किल्स को जाहिर किया जाए। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद फिर इंतज़ार किया जाता है, तीनों में से किसी एक को जॉब मिलती है या तीनों को नहीं मिलती। लेकिन जिसको जॉब मिल जाती है उसकी कैफियत सोचिए, वहीं बैठे बैठे सेल फोन घुमाएगा, मुबारक हो बेगम को कि जॉब मिल गई, उम्मीद लग गई, मिठाई लेके घर जाएंगे, खुशी होती है ना। अब मिसाल है कि कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, किसी को एक वीकली ट्रायल बुलाया जाता है, कुछ को ट्रेनिंग सेशंस दिए जाते हैं। बहरहाल किस्सा मुख्तसर, जब ये सब कुछ हो गया, कर करा के कर ले और सारी जॉब डिस्क्रिप्शन हो जाए, उसके बाद वो एम्प्लॉई आए और एक बड़ा भोला भाला सवाल करे अपने बॉस से, क्या आपकी हर बात तो नहीं माननी पड़ेगी मुझे? ये जितना अभी तक सारा प्रोसीजर हुआ है, क्या जरूरी है कि मैं सारे काम करूं? आप सोचिए उसको वो क्या कहेगा, आप आए किस लिए? हम रोज जाके अपनी जॉब पे ये कहते हैं कि मेरी डेली शीट दीजिए। आपने देखा है जहां बाजाब्ता काम होता है, एवरी वर्कर को एक शीट दी जाती है कि ये आपकी डेली शीट है, उस पे काम लिखे होते हैं, थिंग्स टू डू, ये हुआ ये करना नहीं, और एंड पे वो शीट वापस ली जाती है, क्या किया क्या नहीं किया, उसी की बेस पे उनकी आगे से स्किल्स देखी जाती हैं। अब कोई ये सब कुछ कर ले और के बस जॉब मिल गई और क्या करना था, शुक्र है जॉब मिल गई, जॉब मिल गई, जॉब मिल गई, जॉब मिल गई, अब मैं वहां का एम्प्लॉई हूँ, उसके बैजेस लगा ले, उसका यूनिफॉर्म पहन ले, और बड़ा मारूफ इदारा कोई हो या ऐसी कंपनी हो तो फख्र भी करे, देखा मुझे मिल गई ना जॉब। अच्छा जी, अब आगे क्या होगा? आइए काम पे आ रहे हैं, आपको जी कल 9 बजे आना है। क्या आर यू श्योर, जरूरी है कि मैं आऊँ? आपको वाकई मेरी जरूरत है? हाँ, क्या ख्याल है 9 बजे की बजाय मैं 11 बजे ना आ जाऊं? कहेंगे ये क्या हो रहा है, इसका दिमाग ठीक है? अब वो आ भी जाए तो आपके, क्या आपने वाकई मुझे काम के लिए बुलाया था? ओह अच्छा, मैं समझा कि आप ऑफिस में अकेले बोर हो रहे होंगे तो आप मुझे गपशप के लिए बुला रहे हैं। हर एक को पता है कि जॉब कैसे करते हैं। अब इन सारी चीजों को ले आइए इया का नाबुदू पे। जब एक बंदा ये लफ्ज बोलता है ना कि या का नाबुदू, तो असल में वो एक जॉब ढूंढ रहा होता है। वो कहते हैं, अल्लाह आई एम अवेलेबल, आई एम जॉबलेस, आई नीड वर्क, मुझे किसी को अपना बॉस बनाना है, मुझे अपना वक्त इस्तेमाल करना है। फिर वो तरसता है, फिर वो सर्च करता है, ढूंढता है, उसकी आंखें ढूंढ रही होती हैं कहाँ से कोई ऐसी ऑफर आए, कोई ऐसी एम्प्टी स्पेस दिखे कि मैं वहां ऑफर करूं। फिर वो अल्लाह के रास्तों को ढूंढता है, फिर वो सोचता है कि एक दफा बस मेरा नाम लग जाए, मुझे पता चले एप्लीकेशन मिलती कहाँ से है। फिर वो अल्लाह के रास्तों की एप्लीकेशंस फॉर्म ढूंढता होता है, वो किसी जगह दीन का काम करने का फॉर्म भी हो सकता है, वो कहीं अपनी स्किल्स पेश करने का फॉर्म भी हो सकता है कि मैं फारिग हूँ या मैं फारिग होना चाहती हूँ, मुझे इस काम का मौका दें, और कहीं वो सीखने का मौका भी हो सकता है। यानी हर तरह का काम हो सकता है, जो काम बंदा बेहतरीन कर सके। दिन में 5 बार वो बंदा मस्जिदों में इस उम्मीद के साथ जाता है कि शायद अल्लाह ताला मुझे चूज कर ले, मुझे चुन ले। और फिर जब उसको कहीं से कोई एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाता है तो वो ये नहीं सोचता कि अच्छा देख लूँ मेरी दोस्तों ने किया कि नहीं किया, मेरी सहेलियां आई हैं कि नहीं, जरा मैं देखूँ होता क्या है। वो तो कहता है बिस्मिल्लाह पढ़ूँ, जल्दी से मैं ले लूँ। देखिए, जो जॉबलेस होते हैं, जब उनको कोई जॉब की ऑप्शन दिखती है तो क्या वो पहले दूसरों को देखने लगते हैं, अच्छा जरा बाकी सारे फिल कर लें फिर मैं करूँगा? हाँ, क्या करते हैं वो लोग, फौरन कहते किसी को पता भी ना चले पहले मैं सबमिट कर दूं। इंसान की तो फितरत में इतना बुखल है, आप पढ़ेंगे आगे, वोखिरतिल अनफुसुश शुख, अल्लाह ताला कहते हैं इंसानों के नफ्सों में तो शुख भरा हुआ है, बुखल है इनके अंदर, स्टिंजीनेस है, अपने आप को ज्यादा फायदा देना चाहता है। बंदा कहते पहले मेरी सीट पूरी हो, पक्की मिल जाए जॉब, फिर देखूंगा कोई है तो मैं अपने किसी कजन को भी बुला लूंगा, कोई है ऐसा जो कहे मेरी जॉब तुम ले लो, मैं नहीं करता, बहुत मुश्किल है ऐसा करना। फिर इस तरह ये सारे मरहले करते करते जब एक बंदे का नाम अल्लाह के नाम के साथ लग जाता है तो खुशी मनाता है, फिर वो रोता धोता नहीं रहता, हाय क्या मुसीबत जॉब मिल गई। आप देखिए कि फी जमाना जो जॉबलेस होता है ना, उसको लोग पेशेवर पिटी फीलिंग उसके लिए रखते हैं, उसको तर्स की नजरों से देखते हैं, बैड फील करते हैं, हाय फलां का हस्बैंड उसकी जॉब नहीं है, फलां का बेटा वो जॉबलेस है। और यकीन जानिए कि मर्द अच्छे ही नहीं लगते ऐसे बैठे हुए। पैसों की बात अलग होती है, मर्द काम पे ही अच्छे लगते हैं ना, ये अलग बात है कि अब इसमें आप औरतों को भी डाल लें। हाँ, लेकिन हमेशा जो जॉब पे लगा होता है ना, उसको लोग रश्क से देखते हैं। इसी तरह जिस बंदे को अल्लाह ताला कहीं कबूल कर ले अपने रास्ते में, उसके ऊपर रश्क आना चाहिए। आजकल हम सब ने भी एक नई जॉब साइन की है, आपने एप्लीकेशन फॉर्म साइन किए हैं एज अ स्टूडेंट, तो हमने साइन किए हैं एज अ हेल्पर आपकी रहनुमाई के। क्या अब हमें रोते धोते रहना चाहिए? पिटी फीलिंग आनी चाहिए? एक जज्बाती फैसला समझ के बैकअप कर लेना चाहिए? हरगिज़ नहीं। अपने चेहरों पे वो ताजगी लाइए जो नई नई जॉब मिलने के बाद लोगों के चेहरे पे होती है। नया शौक, नया जज्बा, नया वलवला, हर उस बात को मानने के लिए तैयार रहिए जो अल्लाह ताला हमें कहे। बेहतरीन तकाजे निभाइए। ये जॉब कोई छोटी जॉब है? जैसे एक एम्प्लॉय जाता है और उसको पूरी थिंग्स टू डू दी जाती है, वर्कशीट दी जाती है, यहाँ आपका भी फर्ज बनता है और हमारा भी फर्ज बनता है। पहले तो हमारा ही बनता है कि हम आपको बुलाते हैं तो हम डोर तो खोलें, आपको बुलाया है तो आपके पढ़ाने के लिए टीचर्स का इंतजाम तो हो। ये आपसे ज्यादा कड़ा इम्तिहान हमारा है। हम कर लें अपना काम और आप ना करें तो भी बात नहीं बनेगी, और आप करने को तैयार हो और हम ना तैयार हो तो भी नहीं बनेगा। गाड़ी के चारों पहिए मिलते हैं तो मंजिल मिलती है। इस काम के इब्तदाई दिन है सूरत फातिहा, जहां भी बड़ी पढ़ाई जाती है वहां इब्तदाई होती है। बस सोच लें कि एक ऐसे रास्ते पे चल पड़े हैं कि जिसकी मंजिल बड़ी प्यारी है, बजाहर दूर दिखती है क्योंकि ऊपर रास्ते में पहाड़ियां भी आती हैं ना, तो पहाड़ी के पीछे छुपी होती है और हमें दिखती नहीं। जब बंदा पहला कदम निकालता है ना घर से, तो मंजिल नहीं दिखती, लेकिन कोई ये सोच के छोड़ नहीं देता कि अच्छा पता नहीं मंजिल है भी कि नहीं। है मंजिल, इया का नाबुदू। बंदा इस बात का यकीन रखता है कि अल्लाह ताला मुझे पता है कि तू मुझे अपनी बंदगी में कबूल कर लेगा, तो अपनी गुलामी में कर लेगा। फिर हर वो काम करना है जिसकी कमिटमेंट की। ये शैतान का बहुत बुरा धोखा होता है कि बंदे को आधा काम करने का मौका देता है और आधा नहीं करता। 6 माह से इंतजार कर रहे थे कोर्स शुरू होगा शुरू होगा, अब हुआ तो अब कहते हैं इट्स ओके, नथिंग इज न्यू, वी नो एवरीथिंग। और ये कोई बात है बच्चों की तरह अलिफ बात है, सुबह उठ के पढ़ाना शुरू कर देते हैं। हम तो सोचते थे कोई इंटेलेक्चुअल किस्म की बातें होंगी, कोई मुश्किल मुश्किल लफ्ज़ बोले जाएंगे। ये शैतान का धोखा होता है। हमने ये समझा कि जो चीज़ मुश्किल लगती है वही सही है, हालांकि मुश्किल चीज़ को आसान अंदाज में पढ़ना यही कमाल है। और इस तरह फिर एक इंसान अल्लाह की बंदगी के रंग में रंगा जाता है। यहाँ आज बात हो रही है पारे के आगाज़ में इय्याका नाबुदु की, पारे के अख्तिताम पे एक आयत आएगी सिबगतल्लाहि वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा, अल्लाह का रंग, और कौन है ज्यादा प्यारा अल्लाह के रंग से। ये रंग कौन सा है? ये बंदगी का रंग है, ये गुलामी का रंग है। इसी का एक ईमान वाला दिन में सिर्फ फर्ज पढ़ता है तो 17 बार, सुन्नतें पढ़ता है तो इससे भी ज्यादा, और नफिल पढ़ता है तो शायद सारा दिन इसका इजहार करता है कि या कनाबुदू, ए अल्लाह मैं खालिस तेरी बंदी बनूंगी। ये दावा भी है और ये वादा भी है, लेकिन होता क्या है, अमली जिंदगी में क्या हो रहा है? कितने लोग हैं जो इया कना बुदू कहने के बाद एक पाबंदी को महसूस करें, जिम्मेदारी का एहसास रखें? हम तो कहते हैं बस कलमा पढ़ लो, बस नाम रख लो मुसलमान का, इसके बाद जो मर्जी करना। आज मनमानी करने वाले मुसलमान ज्यादा हैं अल्लाह की मानने की बजाय, वो मन की ज्यादा मानते हैं, रब की कम मानते हैं। जो रब को तो मानते हैं, रब की नहीं मानते। इया का नाबुदू क्या है? रब को भी मानो और रब की भी मानो। उसकी माने बगैर बंदगी का वादा पूरा नहीं हो सकता। मसलन आप देखिए कि आप एक मेड को रखें और वो मेड आपसे दिन में आते ही जब आए गुड मॉर्निंग करने के बाद खड़ी होके कहे मैडम आप जो कहेंगी मैं करूंगी, आप जो कहेंगी मैं करूंगी, आप जो कहेंगी मैं करूंगी। आपके माशाल्लाह बड़ी अच्छी है प्रोटोकॉल के साथ मेरी जॉब कर रही है, आप कहें कि चलो अच्छा ऐसा करें, आप किचन साफ कर लें, कहे जरूरी है? अच्छा ये काम कर लो, आज ऐसा करो कि गोश्त पका लो। कहना नहीं, मैं तो आज दाल पकाऊंगी। आप कहते हैं कि अच्छा ऐसा करें कि जाएं, आप अपने ड्राइवर को कहते हैं कि जाएं बच्चे को 1 बजे ले आएं। 1 बजे तो नहीं, 4 बजे जाऊंगा। आप बताइए क्या हम ऐसे गुलामों को कुछ रखेंगे? 1 महीना हो सकता है रो धो के सब्र कर लें। क्या इसको जॉब पे रखना है तो क्या उसको पे देंगे जो काम ना करे? हम नहीं देंगे। क्यों? इसलिए कि हम अर्रहमान अर्रहीम नहीं है। ये वो अर्रहमान अर्रहीम है जो मनमानियां करने वालों को भी दे रहा है। ना उनकी ऑक्सीजन बंद, ना उनका खाना बंद, ना उनका पानी बंद, कुछ भी तो उनसे नहीं लेता, सब कुछ दे रहा है। और ऐसा शख्स फिर हकीकत में अपने इस कहे हुए लफ्ज़ का मजाक उड़ा रहा है। आज हमारा हाल यह है कि हम अल्लाह के सिवा सब की गुलामी करते हैं, नेमत देने वाले को भूले हुए हैं। इमाम गजाली रहमहुल्लाह अलैह कहते हैं, इबादत की 10 किस्में हैं। गोया के पूरी जिंदगी का अहाता है इस इबादत के लफ्ज़ में। पहली किस्म है इबादत की नमाज, बेहतरीन इबादत है। फिर ज़कात, रोज़ा, कुरान पाक की तिलावत। यहाँ तक तो ये 4 चीज़ें पूरे शऊर से कहूँगी कि हर एक हम में से यही कहता है कि इबादत है। पांचवी भी हज, यानी ये 5 पिलर्स कह लें आप। अब ये 5 चीज़ें तो हैं, लेकिन छठी चीज़ के आगे अपना मुहासबा करते हुए सुनिए कि क्या हम इसको इबादत समझते हैं? क्या है वो? हलाल जरिए से रोज़ी हासिल करने की कोशिश। अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया, अल कासिबु हबीबुल्लाह, मेहनती अल्लाह का दोस्त होता है। तो गोया के हर वो मर्द जो हलाल जरिए से रोज़ी कमाने की कोशिश करता है, सारे शकुक व शुभात से बचते हुए, वो इंशाल्लाह इबादत की हालत में है। 7वीं किस्म है हर हालत में अल्लाह का जिक्र करना, खड़े बैठे याद रखना अल्लाह को। देखिए जिक्र जुबान से भी होता है और जिक्र दिल से भी होता है। इस वक्त मैं किसी को भी सोच रही थी, अब मैं नाम नहीं लेती, लेकिन मुझे एकदम ख्याल आया कि एक साथी इधर बैठती है वो आज नहीं है। अब मुझे ख्याल है वो नहीं है, आपको तो नहीं पता चला ना, लेकिन मेरे दिल ने उनका जिक्र किया। तो हर वक्त अल्लाह का जिक्र करने से मुराद क्या है? अल्लाह को याद भी रखो, अंधेरे में, रोशनी में, रात में, दिन में अल्लाह का तज़किरा करते रहो। इसी तरह 8वीं किस्म है मुसलमानों, पड़ोसी और साथी के हकूक अदा करना। ये भी सब इबादत की कैफियत होती हैं। और 9वीं किस्म, लोगों को नेकियों की दावत देना और बुराइयों से रोकना। कितना मुश्किल लगता है, लेकिन जो लोग इस काम से जुड़े हुए हैं उनके लिए मुबारक है कि उनका वो सारे का सारा वक्त जो है वो इबादत में गुजर रहा है। और 10वीं किस्म क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तेबा करना, सुन्नतों को अपनी ज़िंदगी में जगह देना। अब आप देखिए कि इसमें क्या पूरी ज़िंदगी नहीं आ गई? कोई चीज़ पीछे रह जाती है इसके बाद? तो इससे क्या पता चला कि एक ईमान वाला अपनी पूरी ज़िंदगी को इबादत बना सकता है इल्म की बदौलत। आज हमें ये बात पता चली ना, हो सकता है कुछ लोगों को आज फर्स्ट टाइम पता चली हो। अब आज के बाद जब आप ये काम करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छी फीलिंग आएंगी ना, सिर्फ नीयत कर लिया करें। देखिए वही काम है, आप घर साफ करती हैं ना, एक मुसीबत क्या है? हाय घर गंदा, बच्चे बदतमीज, घर गंदा, घर गंदा, मियाँ को सलीका नहीं, ये नहीं, वो नहीं। और दूसरा आप कहें अत्तहूरु शत्रुल ईमान। अल्लाह के नबी की रिवायत का खुलासा है कि सफाई निस्फ ईमान है। आप कहते हैं अच्छा सफाई निस्फ ईमान है, चलो मैं घर साफ कर रही हूँ, मैं अपने ईमान को तकवीत दे रही हूँ। वो घर का साफ करना आपकी इबादत बन जाएगा। आप देखेंगे कि झाड़ू उठाना जो है वो आपके लिए कलम उठाने के बराबर बन जाएगा। इसी तरह खाना तो आप सभी पकाते हैं ना, कोई औरत है जो नहीं पकाती? थोड़ा पकाए, ज्यादा पकाए, पकाती हैं। एक ये कि पका रहे हैं इस ओके, और दूसरा ये आप कहेंगे अच्छा मैं खाना पकाऊंगी, अच्छा मेरा ये खाना खाएंगे मेरे मियाँ खाएंगे, अच्छा फिर वो मस्जिद में नमाज पढ़ने जाएंगे, अच्छा वो इस खाने से रोजा रखेंगे, वो अल्लाह मैं तो उनकी सारी नमाजों में हिस्सेदार हो गई, मैं तो उनके रोजे में शरीक हो गई। अच्छा, इसके बाद कोई जो है वो कोई और अच्छा काम करेगा, मैं उसके कामों में हिस्सेदार होंगी, जो लुक में उसके पेट में रहेंगे मुझे उसमें अजर मिलेगा। आप जरा बताइए, उस खाने और इसमें फर्क पड़ेगा अब खाने में? आप ऐसा ना हो कि और ही पकाना शुरू हो जाए, सारी नेकी इसी को बना लें कि अब हम मियाँ को ही खिला खिला के अपनी नेकियां बनाए। सिर्फ फर्क बता रही हूँ, मेहमान तो सभी के घरों में आते हैं ना, एक यह मुसीबत, ये मियाँ हर चौथे दिन दावत कर देते हैं, इनको तो आदत ही है, इनको तो बस शादी क्या करनी थी किसी बावर्चन से कर लेते हैं। अच्छा, अब दावत पकती है, 50 लोग आते हैं, एक ये कि आप एड़ी छोटी का जोर लगाते हैं कि अच्छी दावत हो, बेहतरीन खाना, क्यों कि माशाल्लाह शहर के बड़े बड़े लोग आ रहे हैं और फुला और फुला। लेकिन एक ऐसी सोच है जो आपका दिल महसूस के रख देगी, ये बड़ी गहरी बात है। और वो क्या? अच्छा, जो 50 लोग अभी मेरे पकाए हुए खाने को खा के बैठे हैं, अभी मगरिब की अजान हुई थी, कोई उठाई नहीं नमाज के लिए, मेरा तो लॉस हो गया। मैंने तो सोचा था इन 50 की नमाजों में मुझे हिस्सा मिलेगा, ये तो इसके बाद सिगरेट पीने लग गए, ये तो कुछ खराब चीजें देखने लग गए। इससे फिर सोच के पैमाने बदलते हैं। अल्लाह के नबी ने कहा कि तुम्हारे पास मोमिन खाएं, मुत्तकी तुम्हारे घरों में आए, तकवा वाले ईमान वाले आए, क्यों कि उनके खाए हुए में से तुम्हें भी अजर मिलेगा ना। इससे फिर सोच बदलती है, फिर हमारे इर्द गिर्द आने वाले जाने वाले, हम जिनकी दावतें करते हैं, जो हमारी करते हैं, वो बदलने लगते हैं। पहले हम बस ऐसे ही बुला लेते हैं लोगों को, इन लोगों को कि बस जो है सो है। अब दूसरी सूरत है, आप क्या क्या कि हम बेदीन लोगों को ना बुलाएं, बेनमाजियों को ना बुलाएं, नहीं, फिर आप उनको नसीहत करेंगे, फिर आपको फिक्र लग जाएगी कि ये मेरे रिश्तेदार हैं, मैं इनको छोड़ूंगी थोड़ी, अल्लाह ने तो सिला रहमी का हुक्म दिया है और मैं कतर रहमी क्यों करूं, अब क्या करूं, चलो किसी तरीके से अल्लाह तो इनको नमाजी बना, अल्लाह इनको नमाजी बना। फिर आपके दिल में एक तड़प आएगी, एक ऐसी कैफियत आएगी कि आप उसको फिर सोच ही नहीं सकते, और ये फिर खुद कलामिया बंदे को रब के साथ जोड़ती है। होते होते जिंदगी के इंतहाई निजी मौकों पर, हर मौके पे आप ये जरूर चेक करेंगे कि मेरे इस काम के बाद मुझे इबादत का अजर मिला कि नहीं मिला। एक बीवी है तो वो अपने शोहर की ख्वाहिश को भी पूरा करेगी, तो इस सोच के साथ करेगी कि ये किसी हराम तरफ ना चला जाए, ये अल्लाह की दी हुई जिम्मेदारी है। वो अपने बच्चे को भी पालेगी, ये नहीं सोचेगी कि ये बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा, ये मेरे मुस्तकबिल का सहारा बनेगा, नहीं, वो ये सोच के बच्चे को खिलाए पिलाएगी कि अल्लाह के रास्ते के सिपाही बनेंगे, ये अल्लाह के दीन को फैलाने वाले बनेंगे। और इस तरह या कना बुदू व या कनस्ताइन, इसकी कैफियत बढ़ते बढ़ते अल्लाह ताला के सामने फैलती है। और यकीन करें कि ये छोटा दावा नहीं है, अल्लामा इकबाल ने भी कहा था ना कि ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, यानी ये कोई छोटी बात नहीं है। बंदगी के तकाजे पूरे करना, बंदगी के अहद जो बांधे हैं उनको निभाना, ये आसान बात नहीं है। इंसान बार बार भूल जाता है, पसीने आने लगते हैं, यकीन करें, शैतान इस तरीके से इंसान के पीछे लग जाता है। फिर इंसान अल्लाह ताला से मदद मांगता है कि रब्बी आइन्नी अला जिक्री का व शुक्री का व हुस्नी इबादतिक। इस दुआ को दोहराइए, आप इसको अपनी दुआओं का हिस्सा बनाएं। और ये नबी सल्लम नमाज के फौरन बाद पढ़ते थे, आप अभी गम ना करें, आपको जो बुक दुआओं की कराई जाएगी इसके बाद इंशाल्लाह उसमें ये दुआ है। लेकिन इबादत कैसे अच्छी की जाए, अब ये एक सवाल उठता है ना कि इबादत कैसे अच्छी की जाए, कह तो रहे या कनाबुदू, बोलपने में कह दिया, अब इबादत अच्छी करनी भी है तो अब क्या करें? या कनाबुदू के लिए अल्लाह से मदद मांगते हैं कि रब्बी आइन्नी अला जिक्री का व शुक्री का व हुस्न इबादतिक, ए अल्लाह तू मेरी मदद कर के मैं तुझे याद रख सकूं, तेरा शुक्र अदा कर सकूं और तेरी बंदगी आसन तरीके से बजा ला सकूं। गोया कि अल्लाह की मदद के बगैर हम इबादत भी अच्छी नहीं कर सकते।